Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.
अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से ही इस समझौते को लेकर आशंका बढ़ती जा रही थी। मंगलवार को दोनों देशों के वार्ताकारों ने दिल्ली में बैठक की है। समझौते में आड़े आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए दोनों पक्ष कदम उठाने को लेकर तैयार दिख रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी कर प्रगति को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। अगस्त में पैदा हुए टैरिफ विवाद के बाद 6वें दौर की बातचीत को स्थगित कर दिया गया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी हुई। और अब चर्चा घरेलू राजनीति की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ दिनों के भीतर राज्य में चुनाव की घोषणा होने वाली है। वैसे राजनीतिक दल इसके पहले ही जमीन पर उतरकर मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने मंगलवार को बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा की अगुवाई आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा के पहले ही दिन भाजपा जदयू की एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार सहित तमाम आरोप लगाए। उन्होंने यात्रा के उद्देश्य बताते हुए कहा,
नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए, आज बिहार में कारखाने इंडस्ट्री लगे, इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं।
राज्य में नई नवेली जनसुराज पार्टी की भी चर्चा लगातार हो रही है। यह पार्टी लगातार अभियान चलाए हुए है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मौजूदा राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहते हैं,
पीएम मोदी आए और एक पहली बार नहीं आए, 5 दफे आ चुके, और जब आएंगे अपनी बात कहेंगे, देश दुनिया में क्या कर रहे हैं ये कहेंगे, राहुल गांधी को लालू को गाली देंगे, राहुल गांधी आएंगे वो मोदी को गाली देंगे। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब बंद होगा। दोनों में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बाढ़ की समस्या कब खत्म होगी। बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी ये मोदी पहले बताएं।
एनडीए को सत्ता में बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय हैं। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आज बातचीत होने वाली है। सरकार ने नशीली दवाओं के विरुद्ध अभियान को तेज करने पर जोर दिया है। मंगलवार को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एक सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
जब तक ये अभियान के लिए हर जिला संवेदनशील नहीं होता है, हर जिले की पुलिस संवेदनशील नहीं होती है, हर जिले का शिक्षा अधिकारी संवेदनशील नहीं होता है, ये अभियान सफल नहीं हो सकता। जिले के धार्मिक नेताओं को भी इस अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, सभी युवा संगठनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो एनकोर की जिला स्तर की मीटिंगों में संख्या जरूर बढ़ोतरी दर्ज हुई है लगातार फॉलोअप के बाद, परंतु आज भी 272 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मीटिंग नहीं।
युवा पीढ़ी को नशे से बचाने का आह्वान करते हुए अमित शाह कहते हैं,
अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। और दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और अब चर्चा मौसम की। इस साल के मानसून में कई उत्तरी राज्यों को मुसीबत की बारिश का सामना करना पड़ा है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी तबाही हुई है। बादल फटने, भूस्खलन की कई घटनाएं इन दोनों राज्यों में हुई हैं। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार तड़के भी बादल फटने के कारण तबाही का मंजर देखने को मिला। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति का जायजा लेने के बाद कहते हैं,
घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है।
वही हिमाचल प्रदेश में इस बार जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में कहा,
अभी 1500 करोड़ रुपए के रिलीफ की जो आशा हमारे प्रधानमंत्री जी से है उस पर हमारी आंखें टिकी है और निश्चित रूप से क्या वो स्कीम बेस्ड आता है, क्या वो स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में आता है, क्या वो ग्रांट आती है, ये बहुत ही देखने वाली बात है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्राकृतिक आपदा को गंभीर बताया है।
ऐसी बारिश इस बार पड़ रही कि जिसके आगे किसी का बस नहीं चल पा रहा। हमें लगता था कि शायद अब बरसातें खत्म होने वाली हैं, अब हम राहत कार्य में और तेजी के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे एक जगह जुड़ते हैं दूसरी जगह पे बारिश आ जाती है। ये सिलसिला लगातार जारी है और बारिश ने मिट्टी को इतना खोखला एक तरह से कर दिया है कि मिट्टी की पकड़ खत्म होती जा रही है। गांव धंसते जा रहे हैं, मकान गिरते जा रहे हैं, बसें बहती जा रही हैं, आदमी लापता होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां पर किस रात को न जाने कितनी बारिश हो और कौन कब अपने जीवन खो दे।
हालात से निपटने में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अनुराग ठाकुर कहते हैं,
राज्य की सरकार की ओर से ना तिरपाल, ना पैसा, ना बाकी सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा है कि सरकार है कहाँ।
वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद जताई है। उन्होंने भाजपा नेताओं से राजनीति न करने की गुजारिश की।
महज भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन मंत्री भेज रहे हैं, मंत्री भेजने से कुछ कार्य नहीं होने वाला। मंत्रियों द्वारा जो धन लाया जाना उससे कार्य होना है। आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो कि आज केंद्र का ये मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है।
जहां जाते जाते मानसून पहाड़ी राज्यों को पीड़ा दे रहा है, वहीं कुछ राज्यों से मानसून ने चुपचाप विदाई ले ली है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।